बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरि ओम, हरि ओम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुति दिव्येस्तवे वेदैशांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यमशामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हिवाय तस्मै नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्त श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण सब जग नारायण 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 सब जग नारायण नारायण जल थल नारायण 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 जल थल नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ईशावास्य उपनिषद के सातवें मंत्र के द्वारा कल हम लोग विचार कर रहे थे। भगवती श्रुति ब्रह्म ज्ञानी की तत्ववेता की महिमा बताती हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्य आत्मनेवाभूत जानतः तत्र को मोह को शोक एकत्व अनुपश्यति। जिस काल में जिस समय ज्ञानी पुरुष सर्वभूत रूप आत्मा को देखता है, आत्मा में ही सर्वभूत रूप होगा, ऐसा एकत्व दर्शन करने वाला तत्ववेता जो आत्मा में सर्वभूत को जानता है देखता है और सर्वभूत रूप आत्मा जो देखने वाला होगा वह तत्ववेता तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष तत्र को मोह को शोक उसके लिए कहां तो मोह कहां शोक की बात रह जाती है। शोक मोह माने संसार इससे अलग हो गया। शोक मोह से अभिप्राय है संसार से अलग हो जाना संसार ज्ञानी के लिए नहीं रह जाता है। संसार तभी तक है, तभी तक मोह है, मैं और मेरा तब तक है, शोक भी तभी तक है। बोले कब तक? जब तक कि हमारे लिए ये सर्वभूत सब में एक आत्मा का दर्शन नहीं होता। एक आत्म दर्शन प्राप्त करना ही इस मंत्र के माध्यम से भगवती श्रुति हमें ये स्पष्ट करना चाहती है कि मैं कई बार ये बात कहती हूँ कि भगवान ने हमें जो ये मनुष्य शरीर दिया है, कबहू की करुणा निधि करुणा कर देही, उन्होंने कृपा करके हमको ये मनुष्य शरीर दे दिया, शरीर रूपी साधन उपलब्ध करा दिया, और इस शरीर रूपी साधन को प्राप्त करके इस साधन से जो हमें प्राप्त करना है, बोले वो क्या प्राप्त कर, ये एक शरीर ही माध्यम हो सकता है, ये शरीर ही साधन हो सकता है जिस साधन को लेकर के हमारी दृष्टि हमारी स्थिति उस आत्मा में बन सके, आत्मस्थित हो सके, तत्व स्थित हो सके, तत्व में हमारी स्थिरता बन जाए। और तत्व में स्थिरता बनने के बाद यह जो शरीर है, जिस शरीर से हमारा संसार से संबंध है, उस शरीर का महत्व फिर नहीं रह जाता। उससे जो हमें प्राप्त, जब तक ये शरीर हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बोले कब तक महत्वपूर्ण है? जब तक हमारी वो तत्व में दृष्टि नहीं बनती। और तत्व दृष्टि बनने के लिए भगवान पंजाब के संत हुए हैं गुरु नानक देव, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि उस तत्ववेता को, ब्रह्मवेता को, ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप महेश्वर। ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे परमेश्वर, परमात्मा भी यदि खोजते हैं तो बोले किसे खोजते हैं? परमेश्वर को खोजते हैं। परमेश्वर जिसे ढूंढ रहे हैं, जिसे स्वयं परमात्मा प्राप्त करना चाहता है, ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप महेश्वर, वो स्वयं ही वो वही है, ऐसा तत्ववेता। उसके लिए संसार से वो अलग हो गया, संसार फिर नहीं रह गया, शोक और मोह नहीं रह गया, कहने का अभिप्राय संसार से अलग हो गया। अविद्या रूप ये जो संजगत है उसकी निवृत्ति हो गई और स्वस्वरूप में स्थिति बन गई। अगले मंत्र के द्वारा, आठवें मंत्र के द्वारा कहा, शपर्यागाच्छु क्रमाय शुक्त अभ्रोण स्मन शुद्धम पापम विद्धम कवि मनीषम परिभू स्वयंभू ततोत्थानम व्यवधान शाश्वतीभ्य समाभ्य। अर्थात वह आत्मा सर्वगत, माने आत्मा सर्वव्यापी है। इस मंत्र को भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य ने इस मंत्र का जो अर्थ किया, बहुत लोग सर्वगुण निर्गुण साकार निराकार लिंग पुलिंग को लेकर के चर्चा करते हैं। भगवान शंकराचार्य ने वैष्णवों की व्याख्या में और आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य की व्याख्या में, दोनों में अंतर है। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य ने इस मंत्र का जो अर्थ किया वह इस प्रकार है कि परमात्मा की सर्वव्यापकता किसी लिंग से पुलिंग से लेकर नहीं, लक्षण से लेकर, यद्यपि परमात्मा लक्षणातीत है परंतु ये लक्षण जो बताए वो किसी लिंग से नहीं है, वो न पुलिंग लक्षण से है, और यह लक्षण ऐसा ही है जैसे कह दिया जाए कि चंद्रमा पेड़ से दो अंगुल ऊपर है, एक लक्षण ये है। और एक लक्षण वो लक्षण है जिस लक्षण को हम किसी घट पट आदि के द्वारा समझाते हैं, विश्लेषण को लेकर के समझाते हैं। यहां भगवान शंकराचार्य ये कोई विश्लेषण बता करके नहीं, लक्षणातीत होते हुए भी एक लक्ष्य कह बता रहे हैं कि वह सर्वगत है, शुद्ध है, वह सर्वव्यापी। सपरिया गाचु शुक्रमाय, अर्थात वह सर्वव्यापी है और शुक्रमाय माने अत्यंत ज्योतिर्मय है, अशरीरी है, उसका कोई शरीर नहीं है, अक्षत है जिसका कभी क्षय नहीं है, अस्नायु से रहित है, निर्मल है और सर्वदृष्टा है, सर्वज्ञ है, सर्वोकृष्ट है, स्वयंभू है। और भगवान स्वयंभू, वो स्वयंभू है और वो नित्य सिद्ध संवत्सरादि जो प्रजापति नाम के नाम है, यथा योग्य रीति से उनका विभाग किया गया है। अर्थात सर्वव्यापी वह कहां नहीं है, कब नहीं है, किसमें नहीं है, वह सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, आकाश के समान एकत्व मनोवचम। जैसे आकाश सर्वत्र एक शरीर का समान दिखाई पड़ता है, ऐसे ही वह व्यापक जो सब में सब समय में स्थित है, ऐसा जो व्यापक और ज्योति सुक्रम माने अत्यंत विशुद्ध ज्योतिर्मय, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मय शिव संकल्प मस्तु, वह विशुद्ध ज्योति जिस प्रकाश स्वरूप सबका प्रकाशक, जिससे सब जानने में आ रहे हैं, जिसके बिना कुछ नहीं जाना जा सकता है, ऐसा जो व्यापक है, ज्ञाप्ति जिसे कहते हैं, व्याप्ति ज्ञाप्ति प्राप्ति और मुक्ति, ये चार शब्द आते हैं जिसके लिए कहा व्याप्ति। व्याप्ति से अभिप्राय है सर्वव्यापक। ज्ञाप्ति माने ज्योतिषाम ज्योतिर्मय है, ज्ञानी है, चित जिसे हम कहेंगे। और व्याप्ति से हम सत कहेंगे, ज्ञाप्ति से हम चित कहेंगे, प्राप्ति से हम जो उसका आनंद स्वरूप है, आनंद का लक्षण है, और मुक्ति जिसने सच्चिद आनंद को जान लिया, वह शरीर आदि के बंधन से, समस्त बंधनों से मुक्त हो गया, प्रपंच से मुक्त हो गया, संसार से मुक्त हो गया। संसार से तो पहले ही मुक्त है वो, क्योंकि वहां उसमें कोई प्रपंच नहीं है। इसलिए ऐसा भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि वह कवि माने जो क्रांतिदर्शी है, उसकी क्रांति को मनीषी जिसने मन पर नियंत्रण किया है, मनीषा कहते हैं बुद्धिमान को। और मनीषी वो है जिसने अपनी बुद्धि के ऊपर, मन के ऊपर नियंत्रण रखा है, उसी का नाम मनीषी है। मन के ऊपर नियंत्रण करने वाला उसका नाम मनीषी माने बुद्धि। और जो बुद्धिमान अपने मन पर नियंत्रण रखता है, ऐसे उसको कहा गया है मनीषी। और वह मनीषी परिभू माने जो सबका परिभूत करने वाला, स्थिति को, वस्तु को समझने वाला परिभू, और जो कभी किसी परिस्थिति से बाधित नहीं होता, इसलिए कहा कवि मनीषी परिभू स्वयंभू, वह स्वयं स्वयंभू है, स्वयं से प्रकट होने वाला अर्थात स्वयं ही है, ऐसा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए यह लक्षण उस आत्म स्वरूप के आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ने बताए। इस प्रकार इन लक्षणों के साथ श्रुति के लिए कहा गया है कि हमें भगवान परमात्मा के संबंध में हमारी बुद्धि स्पष्ट, जब तक कई बार मैं ये बात कहती हूँ कि जब तक हमारी बुद्धि में वह परमात्मा सब में है, ये बात एक सामान्य बच्चे को भी आप पूछें तो इतना तो सब जानते हैं कि भगवान सब में, परमात्मा सब में, पर सब में है तो कैसे है? जब तक ये हमारे अंदर स्पष्ट नहीं होगा और उसके साथ हमारी दृढ़ता नहीं बनेगी, तब तक अनुभव में नहीं आएगा। परमात्मा को हमें कैसे जानना है? बोले जानना है कि वह सर्वव्यापक है, सब में है, सर्वव्यापक है, और दूसरी बात वह ज्योतिष है, ज्योतिर्मय है, प्रकाश है, इसीलिए कहा विशुद्धम शुक्रमाय। शुक्रमाय का मतलब है शुक्रमय, ज्योति प्रकाश। अशरीरी है, उसका कोई शरीर नहीं है, माने उसमें अशरीरी से अभिप्राय है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का बना हुआ अशरीरी से है, स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता, वह मन भी नहीं, वह बुद्धि भी नहीं, वह चित्त भी नहीं, जिसे हम एक एक करके सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर जो हमें हमारा दिखाई पड़ता है, यह स्थूल शरीर तो पहले ही मंत्र में कहा कि कहां मोह है, कहां शोक है, माने स्थूल शरीर की निवृत्ति हो गई। और फिर जो सूक्ष्म शरीर है, वह सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहा, अशरीरी माने सूक्ष्म शरीर नहीं, 17 तत्वों का बना हुआ यह सूक्ष्म शरीर भी नहीं। सूक्ष्म शरीर को भी अलग किया, पहली बात परमात्मा की सर्वव्यापकता, दूसरी बात उसके ज्योतिर्मय शुक्र, अत्यंत प्रकाशमय वह ज्योतिर्मय है, अशरीरी है, उसका कोई शरीर नहीं है। और इतना ही नहीं, वह साक्षात स्नायु रहित अक्षत, माने जिसका कभी क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता। नाश तो उसका होगा, क्षय तो उसका होगा जो शरीरी होगा, जो शरीर जो बनता है वो बिगड़ता भी है, इसलिए वहां कोई शरीर नहीं है तो बिगड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है, अशरीरी है। अक्षत जिसकी कभी क्षति नहीं होती, हानि नहीं होती, और स्नायु से रहित है, माने जिसके अंदर निर्मलता है, विशुद्धम विशुद्ध है, निष्पाप है, जहां कोई पाप से अभिप्राय है, कोई मल नहीं है, वासना नहीं है, अत्यंत विशुद्ध है, ऐसा सर्वज्ञ मन का नियंता, इस जिसने अपने मन पर नियंत्रण किया हो, अर्थात मन को देखने वाला, मन का साक्षी, मन का दृष्टा, बुद्धि का दृष्टा, बुद्धि मन बुद्धि से परे, ऐसा सर्वोत्कृष्ट स्वयंभू सर्वोत्कृष्ट, उसी से संवत्सर नामक प्रजापतियों को यथा योग्य रीति से सबको विभाग किया, माने ऐसा जो आत्मस्वरूप है उस आत्मस्वरूप में हमारी निष्ठा, हमारा विवेक, हमारा विचार, हमारी वृत्ति, हमारा मन उस परमात्मा के चरणों में लगे और उस पर हमारी स्थिति बने, उसके लिए ही श्रुति हमें हमारे स्वरूप का निरूपण करके बता, हम यह जो लक्षण जो बताए गए हैं ये किसी और के नहीं है, यह हमारे अपने स्वरूप के हैं, अपनी आत्मा के हैं, हम ये हैं। परंतु हमारा वास्तविक जो स्वरूप है वह तो यही है जो श्रुति बता रही है, परंतु इसे न समझ करके हमने अपने को क्या समझ लिया, बोले अपने को ये समझ लिया जो हम दिख रहे हैं, जो हम दिख रहे हैं वो हम है नहीं है, जो नहीं है जो दिखते हैं उसे हम अपने को मानते हैं, और अपने को मान करके जो हमारा माना हुआ है जो हम हैं उसे हम जानते नहीं है, और जो नहीं है वो हम जो हमने अपने आप को मान रखा है उस मान्यता को पकड़ करके हम इतनी दृढ़ता के साथ उस मान्यता को पकड़े हुए हैं, और जिस मान्यता को मन बुद्धि ने ऐसा दृढ़ करके पकड़ा हुआ है कि उसी के साथ हम कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी घटते हैं, ये सब हमारे अंदर, ये सब किसमें हैं, बोले शरीर को लेकर के, और इन्हीं के साथ जीव सुखी दुखी जन्मने मरने वाला बढ़ने घटने वाला और अपने को समझ रहा है, और इस मान्यता को छोड़ने के लिए जो हमारा ये सब शरीर को लेकर हमने अपने आप में ये माना बस यही मैं हूँ, ये अपने को शरीर मान करके शरीर के सम्मान के साथ बड़ा अपना सम्मान समझते हैं, और शरीर के निरादर के साथ हम अपने आप को बड़ा निरादर मानते हैं कि उसने हमारा तिरस्कार कर दिया, उसने हमारा अपमान कर दिया, हमें तो बड़ा बुरा कह दिया, हमें बड़ा भला कह दिया, अपने आप को भला बुरा हम इस शरीर के तल पर रहकर शरीर को लेकर हम मान रहे हैं। यदि हम श्रुति के इस सिद्धांत को समझ जाएं, ये हमारी समझ में आ जाए, और समझ में कब आएगा, जब बार बार सुनेंगे, और सुनने के साथ जैसे हमारी ये बात दृढ़ अपने भीतर होगी तो हमारा मन शरीर से जो हमारी मान्यता है वो अलग हो जाएगी, छूट जाएगी, और शरीर की मान्यता के छूटने के साथ ही आत्मस्थिति बनेगी, और इस आत्मस्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर सुनते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए, और अपने अंदर में बैठ करके एकांत में मनन और चिंतन करते मनस्वस्था। जब तक मन से मनन नहीं होगा, मन पर नियंत्रण नहीं होगा, ये मन बार बार अपने को पूर्व अभ्यासवत पहले का जो अभ्यास मन का है अपने को शरीर मानने का, शरीर समझने का, शरीर पर ध्यान देकर शरीर की ओर दौड़ने का, जब तक उस मन पर हम विचार पूर्वक नियंत्रण नहीं करेंगे तो यह आत्मस्थिति उपनिषद की ये बात हमारे ऊपर पूरी नहीं हो सकेगी। नारायण ब्रह्म विद्या श्रुति माता भगवती अर्थात यह जो श्लोक है वैष्णव लोग ऐसा मानते हैं, अपौरुषिक जो वेद है, और अपौरुषिक वेद का जो स्वरूप है, क्योंकि वेद तो किसी पुरुष की वाणी नहीं है, और इसलिए यह जो लक्षण बताए गए हैं ये लक्षण किसी पुरुष के नहीं हो सकते, और वेद अपौरुषिक है इसलिए अपौरुषिक वेद अपना स्वरूप इस प्रकार इन शब्दों के इस रूप से स्पष्ट करते हैं, उजागर करते हैं, ऐसा वैष्णव लोग कहते हैं। परंतु भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि यह जो व्याप्ति ज्ञाप्ति और प्राप्ति और मुक्ति यह जो लक्षण है सच्चित आनंद का लक्षण, ये सच्चित आनंद के लक्षण के द्वारा इस आठवें मंत्र की व्याख्या की गई। इस मंत्र की इस प्रकार व्याख्या की, यह जो लक्षण है यह तो केवल उस आत्म भाव में है, आत्मज्ञानी के हैं। और आत्मज्ञानी कैसा है? बोले वो सर्वव्यापक है। आत्मज्ञानी की महिमा इतनी बड़ी है कि वो एक नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है। और अशरीरी है, ज्योतिर्मय है। इस प्रकार जो ये लक्षण किए गए हैं, ये सारे के सारे किसके हैं? बोले आत्मा के हैं। यह मेरा जो स्वरूप है उसकी ऐसी महिमा है, मेरे अपने निज रूप की, निज स्वरूप की ये महिमा है, ये किसी और के लिए लक्षित नहीं हो रहे। इस इन शब्दों से लक्षित कराया जा रहा है। किसको लक्षित कराया जा रहा है? बोले आत्मा को लक्षित कराया जा रहा है। वह आत्मा जो मैं हूं, मैं, परंतु मैंने तो मैं समझा है अपने शरीर को, तो शरीर के साथ मैं समझने पर हमें ऐसा लगता है कि इन लक्षणों से लक्षित जो कराया जा रहा है वो कोई और है, परमात्मा हमसे कहीं अलग दूर ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है। हम कभी कभी कहते हैं ना, वो हमारे जो सबके ऊपर नीली छतरी वाला बैठा हुआ है, इशारा आकाश की ओर कर देते हैं, इशारा किसी और की ओर कर देते हैं, उंगली कहीं और हमारी उठने लगती है। बोले नहीं, जो ऊपर नीली छतरी वाला है वो कोई ऊपर नहीं है, जो यहाँ है वही तो वहाँ है, जो वहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं, जो कहीं नहीं वो यहाँ नहीं। इसलिए जो यहाँ अंदर जो है वही बाहर है, बाहर जो है वही अंदर है, ऐसा संत कहते हैं। तो कहने का अर्थ मेरा तो पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है, जो समष्टि में है वही व्यष्टि में है, जो हमारे भीतर है। तो इसलिए यह जो महिमा है, ये जो शब्द है, यह कहकर जिसे कहा जा रहा है वह कोई और नहीं है, वो तो मेरा आपा है, अपना है, अपना अपना मैं हूं। मैं सर्वव्यापक, मैं शुद्ध, मैं अशरीरी, मैं अक्षत, मैं स्नायुरहित, मैं निर्मल और मैं सर्वदृष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोकृष्ट, स्वयंभू, ये जो भी हूं ये तो मैं हूं। अपनी महिमा, ये महिमा किसी और की महिमा नहीं, हमारी अपनी महिमा इतनी महान है। पर सच अपने को न जानने के कारण, न पहचानने के कारण ही तो हम कितना अपने को छोटा समझे हुए हैं, कितना हमने दीन कर लिया है, कितना हीन कर लिया है, कितने नीचे स्तर तक हम अपने आप को ले आते हैं, कितना छोटा दीन हीन कंगाल बनकर के हम, अकिंचन बनकर के, छोटे बनकर के हम रहते हैं। यदि हम वेदांत के स्वरूप से ज्ञान की महिमा को समझें, ज्ञान हमें छोटा नहीं करता, ज्ञान हमारी व्यापकता को हमें दिखाता है। ज्ञान के पास कुछ निर्माण विभाग नहीं है, मैं हमेशा कहती हूं। ज्ञान तो जो जैसा है उसको वैसा समझना, वो ज्ञान है। ज्ञान किसी हमें हम छोटे हो तो हमें बड़ा कर दिया हो, ऐसा भी नहीं है, हम तो ये है ही। परंतु यही अज्ञान है कि हम अपने आप को नहीं जानते। दुख की बात यही है कि हम यूं तो अपने आप, कोई हमें कह दो कि, कोई कहे कि अज्ञानी जी, कोई हमको आकर के कह दे अज्ञानी जी राम राम, यूं तो हम कहेंगे बड़े अज्ञानी हैं जी, संसारिक हैं, ना समझ हैं, हम जानते नहीं है, अज्ञानी है, इसलिए अज्ञानता बस हो जाता है। परंतु कोई आके हमें कह दे अज्ञानी जी, तो हमें बड़ा बुरा लगेगा, दुख होगा, कष्ट होगा। बोले इसने मुझे अज्ञानी कह दिया। बोले क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप तो अज्ञान का नहीं है ना, स्वभाव से, स्वरूप से तो हम ज्ञानी हैं ही हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये चाह नैसर्गिक रहती है, स्वाभाविक रहती है कि मैं सब कुछ जानूं। ऐसा कुछ न हो जो मैं न जानता हूं। जानने की जिज्ञासा हर के अंदर रहती है। ऐसी जिज्ञासा रहती है कि एक बार ज्ञान के लक्षण को लक्षित करके एक संत अपने शिष्यों को समझा रहे थे, सच्चिद आनंद का ये लक्षण ज्ञाप्ति का बता रहे थे। मैं जानूं, ऐसी जो जिज्ञासा है, तो शिष्य समझ में नहीं आ रहा था। तो महाराज जी ने कहा एक काम करो बेटा, कि कुछ दूर में एक पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हैं, उनको ये डिब्बा जो मैंने बंद करके दिया है, इसको ऐसे का ऐसा उनको दे देना। शिष्य के हाथ में जब डिब्बा आया तो उसने वो डिब्बा लिया और महात्मा के पास पहुंचाने के लिए गए, उनके जो मित्र थे। तो रास्ते में बड़ी जिज्ञासा हुई, ऐसी क्या चीज है महात्मा जी ने इस डब्बे के अंदर गुरुजी ने बंद कर रखी है, जिसको कहा कि तुम देखना मत, खोलना मत इसे, ज्यों का त्यों इसको ऐसे का ऐसे पहुंचा देना। बड़ी उथल पुथल हलचल हुई उसके अंदर, बड़ी बेचैनी हुई, रहा नहीं गया। आखिर उसने डिब्बे का ढक्कन उठाया तो उसके अंदर था क्या, बोले एक चूहा, जो डब्बे से कूद करके बाहर आ गया और चला गया। अब तो वो रोए कि गुरुजी को मैं क्या कहूंगा, गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुम ऐसे के ऐसा वहां पहुंचा के आना, दे के आना। जब वापस लौटा बड़ा परेशान, बहुत दुखी, और गुरुजी के पास आकर के कहने लगा, गुरुदेव, रोने लगा। महात्मा जी ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? बोले महाराज, आपकी आज्ञा का मैं पालन नहीं कर सका। बोले क्यों? क्योंकि आपने तो ये कहा था कि उस डब्बे को खोलना नहीं। महाराज, मेरे से भूल हो गई, मैंने डब्बे का ढक्कन उठाया और वो चूहा भाग गया, मैं वो तक नहीं पहुंचा। गुरुजी कहते हैं, बेटा मैं तो तुझे ये जानता था, तुझे यही बताना चाह रहा था कि हमारे अंदर जानने की जिज्ञासा कैसी है। मैं जानूं, जानने की चाह तो है, जिज्ञासा तो है, इसी का नाम है ज्ञाप्ति। ये जो चाह है, मैं सर्व विषयिक सारे विषयों को जानूं, सर्व विषयिक मुझे ज्ञान हो, ऐसी जो हमारे अंदर की जिज्ञासा है, ये ज्ञान का लक्षण है, यही ज्ञान का स्वरूप। चाहते तो है, परंतु क्या जानना चाहते हैं हम? क्या अपना वास्तविक स्वरूप जानना चाहते हैं? मैं कौन हूं? और जिसके अंदर ये जानने की जिज्ञासा है कि मैं अपने आप को, जहां हम सब विषयों को जानना चाहते हैं, वहां हमारे अंदर ये जिज्ञासा, मैं क्या हूं, मेरा क्या स्वरूप है, उस स्वरूप को जानने की जिसके अंदर जिज्ञासा है, और उस जिज्ञासा को लेकर जब हम ब्रह्म विचार करने के लिए, अपने स्वरूप का विचार करने के लिए बैठते हैं, तो विचार के साथ ही एक एक कर जब हमारे परत हटने लगते हैं, तो को मोह को सोखा, इसके साथ हमारा जो स्थूल शरीर है, जगत आदि है, ये जगत है, संसार आदि है, संसार से निवृत्त हो गए, और संसार से निवृत्त होकर एकत्व मनोवश्यति सर्वभूत रूप आत्मा के हो गए, सर्वभूत रूप एक सब में एकत्व अनुपस्थित, एक आत्मा का दर्शन होने लगा, आत्मवत दिखने लगी। और आत्मवत होकर जब अपनी व्यापकता को देखा तो उस व्यापकता में कहीं प्रकाश के अतिरिक्त हमें कोई शरीर नजर नहीं आया, अशरीर अक्षत जिसका कभी क्षय नहीं है, नाश नहीं है। नाश तो किसका होगा, जिसका आकार होगा, प्रकार होगा, कोई रूप होगा, क्योंकि संसारिक लोगों को ज्यादा आकर्षण किसका होता है, बोले किसी न किसी नाम और रूप का होता है। और जो नाम रूप से बधा हुआ है, नाम रूप से जो भास रहा है, उसी का नाम और रूप रहने वाला नहीं है, वही बिगड़ने वाला है। यहां कोई नाम नहीं है और कोई आकार रूप भी नहीं है, अपने स्वरूप में कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। और यह अत्यंत शुद्धम निर्मल है, कोई वासना नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई उसके अंदर अत्यंत निर्मल माने कोई कामना वासना संसार नहीं है। और सर्वदृष्टा सबको देखने वाला है, सर्वज्ञ ऐसा, उसे सब कुछ ज्ञान है सब, क्योंकि सर्वज्ञ तो वो है जो पीछे क्या, पीछे का भी जानता है और आगे का भी जानता है। इस दीवार से बाहर क्या है ये नहीं दिख रहा है, परंतु ज्ञानी की तत्ववेता की दृष्टि वो दृष्टि है जो अत्यंत तत्ववेता ज्ञानियों ने ही तो हमारे लिए हमारे जीवन जीने की हमारी व्यवस्थाएं की, ज्ञानियों के द्वारा जो विधान किया गया, जिसे कहते हैं विद्वत परिषद, जो ज्ञानियों के द्वारा विधान किया जाता है वही सामान्य व्यक्ति के लिए धर्म हुआ करता है। यह हमारा आश्रम धर्म है, ये हमारा वर्ण धर्म है, ये जाति धर्म है। और इस प्रकार जो धर्म की व्यवस्थाएं की गई, आश्रमों की व्यवस्था की गई और वर्णाश्रम की व्यवस्था की गई, जातियों की व्यवस्था की गई और लिंगों की व्यवस्था की, ये स्त्री धर्म है, ये पुरुष धर्म है, ये ब्रह्मचारियों का धर्म है, ये गृहस्थियों का धर्म है, ये जो धर्म का विधान किया गया, बोले ये सब विधान किसके द्वारा किए गए हैं, बोले यही तो इन ज्ञानियों के द्वारा किए गए हैं, इन तत्ववेत्ताओं के द्वारा किए गए हैं, इनके द्वारा ये किसी और ऐसा जो तत्ववेता ज्ञानी का विधान है, जिनके विधान से यह सब धर्म बनाए गए हैं, वही ऐसे व्यापक दृष्टि रखने वाले ज्ञानियों के द्वारा, क्योंकि अज्ञानी हजार इकट्ठे हो जाए उनके द्वारा जो निश्चित किया जाता वो कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो वो है जो ज्ञानियों के द्वारा अर्थात तत्ववेता ज्ञानियों के द्वारा जो निश्चित किया गया, इसीलिए कहा यही प्रजापतियों के लिए संवत्सर माने प्रजापतियों के लिए विधान किया गया कि कब कैसे कैसे चलना चाहिए। यह जो विधान है बोले ऐसे तत्ववेताओं का जो मार्ग है और ऐसे तत्ववेता ज्ञानी का जो विधान है वो किसके लिए है, बोले इन सब संवत्सर के समान जो प्रजापति लोग हैं, प्रजा के लोग हैं, उसके लिए विधान किया गया है, ताकि इस विधान से चलकर वह भी उस तत्व तक पहुंच सके, उस सर्वोपरिष्ट दृष्टि तक वो भी पहुंच सके, उस आत्म स्वरूप को वो भी प्राप्त कर सके। ज्ञानी इसीलिए कहते हैं नारायण संसार में सब भेद कर सकते हैं, सब भेद कर सकते हैं। भेद एक बार चर्चा हुई कि पारस कितना अच्छा है कि वो लोहे को सोना बना देता है। इसलिए गुरु जो है माने ज्ञानी जो है उसकी संज्ञा किसकी होनी चाहिए, बोले पारस के समान उसकी उपमा होनी चाहिए और लोहे के समान अज्ञानी जीव की होनी चाहिए। जीव को कह दिया अज्ञानी को कह दिया लोहा और ज्ञानी को कह दिया पारस। बोले ये उपमा ठीक नहीं है, ये संज्ञा ठीक नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि पारस लोहे को सोना तो बनाता है परंतु फिर भी अपने और लोहे में फर्क रखता है, लोहे में और अपने में फर्क रखता है कि पारस लोहे को सोना तो बना देता है पर सोना बना करके वो पारस नहीं बनाता है, अपने में और उसमें अंतर फिर भी रखता है। इसलिए ज्ञानी तत्ववेता बोले वो नहीं हो सकता, गुरु वो नहीं हो सकता। बोले क्यों? क्योंकि वह तो अपने में और उस अज्ञानी में कोई फर्क नहीं रखता, वो तो अपना जैसा ही बना देता है। इसलिए कहा कि संसार में गुरु के समान, गुरु से अभिप्राय ज्ञानी तत्ववेता महापुरुष के समान कौन हो सकता है, उसकी समानता कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो अपने को आप जैसा ही, अपना जैसा ही स्वरूप अपने में और उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं करता। गुरु और शिष्य में इसीलिए जो कहते हैं भेद नहीं होता, छल नहीं होता, कपट नहीं होता, बीच में कोई प्रतिबंधक नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सब समाप्त कर देता है अपने। न गुरुर्वा न शिष्यो, आप आत्माष्टक का पाठ करते हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं न वहां कोई गुरु है और न वहां कोई शिष्य है। ये शिष्य गुरु और शिष्य का भेद ही समाप्त हो गया। ऐसा जो तत्ववेत स्वरूप है जहां कोई भेद नहीं है, अभेद दर्शन है। इस प्रकार इस मंत्र के द्वारा उस ज्ञानी की महिमा, उस तत्ववेता महापुरुष की महिमा बताई गई। वह महान पुरुष जिसे हम कह रहे हैं, वह सर्वोपरि सर्वोकष्ट रहने वाला, वह आत्म स्वरूप हमारा है। ये जो लक्षित इन लक्षणों से ये विश्लेषण नहीं, ये तो लक्षण है और लक्षणातीत होते हुए भी समझने के लिए जो लक्षण किए गए हैं वो किसके हैं? बोले ये हमारे अपने हैं। इन ग्रंथों में, इन उपनिषदों में जो महिमा नेति नेति कहकर बताई गई है ना, वो किसी और की नहीं है। ये वर्णन किसी दूसरे का नहीं है। यह जो वर्णन आप सुन रहे हैं ये किसका वर्णन है? बोले ये तो आपका अपना वर्णन है, आपकी अपनी महिमा, अपनी गरिमा इतनी ऊंची है। परंतु हम अपनी इस महिमा को, यह जो ये केवल आपको किसी महिमा से मंडित करके नहीं बताया जा रहा है, अपितु ये आप जो है वो बताया जा रहा है। तो आपका ये अपना स्वरूप है, आप अपने आप में इतने महान हैं, परंतु अपनी नासमझी से, अपनी नादानी से हमने अपने आप को क्या बना रखा है, कितना दुखी हमने अपने आप को किया हुआ है। जरा जरा सी बातों में हम रोने लगते हैं, जरा जरा सी बातों में हम हंसने लगते हैं, कभी विषाद कभी अवसाद में हम घिरे रहते और अपने पास जैसे मकड़ी तंतु को कहीं से नहीं लाती है, अपने आप से तंतु को पैदा करती है और उस तंतु से वो जाल बुनती है और अपने बुने हुए जाल में ही वो अपने उसके अंदर फंसती चली जाती है। उसी तरह से हम अपनी नासमझियों के ताने बाने से अपने आप के आगे एक बहुत बड़ा संसार का जाल रच लेते मकड़ी के जाले के समान और स्वयं उसके अंदर फंस जाते हैं और उसके अंदर फंसते ही नहीं है उसके अंदर मर जाते हैं उस जाले में ही अटके रह जाते अपने को निकल और ये जाला है क्या बोले केवल 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 अपनी नासमझी से पैदा किया और इस नासमझी से रचे हुए इस जाले को ये मकड़ी का जाला तो दिखता है परंतु हमारा बुना हुआ जो जाल है ना वो बाहर से देखना चाहो तो दिखेगा नहीं उसे बड़ी गहराई से देखोगे विवेक की दृष्टि से देखोगे तो तभी ये दिखाई पड़ेगा। इस विवेक की दृष्टि से देखने पर जो दिखाई पड़ने वाला मोह रूपी जाल है इस जाले को दूर करने के लिए जब तक आपको अपने स्वरूप के विषय में सुनोगे नहीं मैं जानती हूं कि एक बार के सुनने से हमारी स्थिति कोई स्थिति प्रज्ञ की बनने वाली नहीं है। हमारी स्थिति प्रज्ञ की जब बनेगी तब जब बार बार हम सुनेंगे हमारी मति में स्थिरता और स्थिरता के साथ जब तक निर्द्वंद होकर एक जगह बुद्धि स्थिर नहीं होगी तब तक ये आत्म स्वरूप के जो लक्षण हैं इन पर हमारी स्थिरता विचार में ध्यान में नहीं आ सकते। इसलिए इन शब्दों का हम अपने अंदर अनुभव करें जब एकांत में बैठें विचार करें तो अपनी व्यापकता को अपनी सर्वगतता को अपनी शुद्धता को अपनी अशरीरता को इन शब्दों के ऊपर इसको लक्ष्य में करते हुए ध्यान में करते हुए इस विचार में इस चिंतन में इस मनन में हम अपने को ले जाए अपने अंदर की ओर और फिर अनुभव करें कि आप स्वयं में जो आपका स्वस्वरूप है अपना आपा है वो कितना महान से महत्तर है कितना महान से महत्तर है। ऐसी महानता आपकी अपनी है और इस महानता को पहचानो और इस महानता को जानकर इसे पहचानकर अपने मन पर बुद्धि पर नियंत्रण कर कभी परिभू स्वयंभू कभी कहा कि वह जो हमारा दर्शन है वो क्रांति का दर्शन है। ऐसा दिव्य ऐसी क्रांति जब अपने अंदर अपने स्वरूप में हमने जाना तो ये किसी के द्वारा बनाई नहीं है स्वयंभू है अपने आप से स्वयं प्रकट हुआ यह बड़ी महिमा है ना। जहां जहां स्वयंभू लिंग है वहां आप दौड़ दौड़ करके जाते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग है यहां एक दिव्य ज्योति है यहां जल चढ़ा के आए हम ज्योतिर्लिंग के पीछे दौड़ते हैं बोले कि कभी सोमनाथ जा रहे हैं कभी मल्लिकार्जुन जा रहे हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग है ना 12 ज्योतिर्लिंगों में जाते हैं आप। यह ज्योतिर्लिंग में हम किस लिए जाते हैं कि यहां तो स्वयं ज्योति प्रकट है यह तो बाहर के ज्योतिर्लिंग है नारायण कभी अपने अंदर का ज्योतिर्लिंग भी देखो जो अपने भीतर की ज्योति है जो अंतः प्रकट ज्योति है अंतर में स्वयं से प्रकट जो ज्योति है उस ज्योति का भी दर्शन करने की कभी इच्छा होती है मैं उस ज्योति से भी तो मिलूं जो मेरे अंतर घट में प्रकाशित है जो मेरे भीतर प्रकट है और उस भीतर प्रकट ज्योति का दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य और सफल हो जाए। उस ज्योति जो ज्योति प्रकट ही है उसे प्रकट कराना नहीं है, परंतु उसके लिए तो केवल आपको अपना ध्यान अपना लक्ष्य अपने भीतर करना है। लक्ष्य बाहर की तरफ नहीं, लक्ष्य भीतर की तरफ है। इसलिए आओ लौटो अपने भीतर, अपने भीतर बैठ करके स्थिर होकर अपने आप को देखो और इसका अनुभव करो, तो तब आपको उपनिषद का ये आठवां मंत्र समझ में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देती हूँ, शेष चर्चा कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।